नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विशिष्टता बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
With Nepal, we have an expansive agenda.
नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
Partnership that we have with Nepal.
भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।